पद विन्यास की अगला रिकॉर्डिंग इस तरह है। प्रसाद की पदावली के पीछे भी बंगला संस्कार कितना था, इसका उल्लेख शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किया है। शुक्ल जी के अनुसार उनके परिशीलन से पद लालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। प्रसाद के मदिर माधव मधुपूर्ण अंतरिक्ष के इंदिवर में जो इंद्रजाल दिखाई पड़ता है उसका सूत्र बंगीय पदावली में मिलता है। पंत ने पद चयन में अनेक स्रोतों का उपयोग किया है जिसमें से रविंद्र काव्य भी एक है। मदिर गंध अंध वायु अथवा गंध मुग्ध हो जात अंध समीरण गंध विदुर समीर नीप निकुंज आदि अनेक पदों को उन्होंने अपना समझकर अपना लिया। कहीं कहीं उन्होंने भाव के साथ साथ पूरी पदावली को भी थोड़े से हेर फेर के साथ रख लिया। जैसे उर्वशी की इन पंक्तियों में तरंगित महासिंधु मंत श्रांत भुंजेगर मतो पड़े छिलो पद प्रांते उक्षवसित फड़ा लक्ष सतो का परिवर्तन पंत जी के परिवर्तन में इस प्रकार देखा जा सकता है। आलोड़ित अम्बुधि फिन्नोन्नत कर सतसत फन मुग्ध भुजंगम सा इंगित कर करता नर्तन। तात्पर्य यह कि छायावादी कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को सीधे संस्कृत कोशों अथवा काव्यों से न लेकर बंगला के माध्यम से लिया और इसका कारण था रविन्द्रनाथ ने कालिदास जैसे कवि के शब्द संस्कार से तत्सम शब्दों को लेकर भी नवीन भावों के ऐसे प्रवाह में सजो दिया कि वे कई अर्थवत्ता से भर उठे। रविन्द्रनाथ ने निर्जीव से लगने वाले संस्कृत शब्दों में भावों की नवीन संजीवनी डालकर उन्हें संजीव कर दिया। इसलिए इन पुनर्जीवित शब्दों ने छायावादी कवियों का ध्यान विशेष आकृष्ट किया। छायावादी कवियों ने संस्कृत के शब्दों को भावरंजित और कल्पना स्फीत करके एकदम नया रूप दे दिया। छायावादी कवियों के इस पुनः संस्कार कार्य का महत्व तब मालूम होगा जब हम किसी छायावादी कविता का संस्कृत रूपांतर करके मूल के साथ और फिर संस्कृत की प्राचीन कविता के साथ उसकी तुलना करें। उदाहरण के लिए पंत की निम्नलिखित पंक्तियों को लें। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसकी संस्कृत छाया एक विद्वान ने इस प्रकार की है। त्यक्त्वा द्रुमाणामिह मंजुलाभाम विहाय मायाम प्रकृतेरुदाराम वाले सुजाले तव कुंतलालाम कथम प्रबध्नामि विलोचने में। पंत की यह कविता कोई प्रौण छायावादी रचना नहीं है, एकदम आरंभिक दिनों में ही इसकी रचना हुई थी। फिर भी यदि इसके संस्कृत रूपांतर को ऐतिहासिक सूझ वाले किसी संस्कृत पंडित के सामने सुना दिया जाए तो इसकी पदावली के आधार पर ही इसकी प्राचीनता में संदेह कर बैठेगा। यद्यपि द्रुम प्रकृति माया आभा कुंतल विलोचन आदि संस्कृत के पुराने ही शब्द हैं फिर भी एकत्र इन शब्दों का प्रयोग तथा इनका क्रम कुछ ऐसा है कि इनके प्राचीनता का आभास नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात तो इन पदों में अनुस्यूत वह भावना है जो स्पष्ट रूप से इन शब्दों के नवीन विन्यास की घोषणा करती है। इधर एक सहृदय पंडित ने कामायनी का भी संस्कृत अनुवाद किया है और उसका अनुवाद भी छायावादी पद विन्यास की नवीनता की पुष्टि करता है। यह सब कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि छायावादी भावुकता तथा कल्पना ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को पुनर्जीवित तो किया परंतु उनका विन्यास इतना नया कर दिया कि वे छायावादी हो गए। यह भावना और कल्पना शक्ति का ही प्रभाव है कि छायावादी पद रचना द्विवेदी युग की अपेक्षा मांसल प्रतीत होती है। यदि उपमा का सहारा लें तो कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन पदावली पतझर का निष्पत्र नंगी टहनियों वाला वृक्ष है तो छायावादी पदावली बसंत की हरे भरे पत्रों पुष्पों से लदी हुई वनराजी। पद रचना में छायावाद की होड़ ब्रजभाषा से थी। ब्रजभाषा के समर्थकों का कहना था कि खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं सकती। उन्हें खड़ी बोली की खरखराहट इतनी कर्णकटु परुष और पौरुषमय लगती थी कि लोग प्राय इसे कविता जैसी कोमल वस्तु का माध्यम मानने से इनकार करते थे। लोग ब्रज माधुरी में पगे थे। उन्हें द्विवेदी युग की तथ्यवादी कविता से संतोष न होना स्वाभाविक था। छायावाद ऐसे ही कोमल रुचि वाले लोगों को जवाब देने का उपाय ढूंढ रहा था। भाषा की कोमलता छायावाद का पहला वादा था, और कहना न होगा कि उसने इसे पूरा कर दिखाया। यहाँ तक कि छायावाद की खड़ी बोली की कविता के सामने ब्रजभाषा खुरदरी मालूम होने लगी। छायावाद के ऐसी कोमल पदावली के निर्माण में पंत का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम है। यदि प्रसाद, निराला और पंत की आरंभिक कविताओं का अध्ययन किया जाए तो साफ मालूम हो जाएगा कि छायावादी कोमल पदावली के निर्माण में किसका कार्य अग्रणी है। प्रसाद, प्रथम भाषण ज्यों अधरान में रहत है तव गूंजत प्राण में, जैसी ब्रजभाषा मिली जुली खड़ी बोली की कविता लिख रहे थे, अथवा झरना के उबड़ खाबड़ पद्य और निराला छूटना है यद्यपि अधिवास, अथवा जूही की गली में जहाँ उसने की केली उस नायक ने निपट नटराई की, जिसे कहते हैं मलयानील, जैसे गद्यात्मक वाक्यों द्वारा कभी ने के प्रयोग का अभ्यास कर रहे थे और कभी यद्यपि तथापि आदि के द्वारा वाक्यों में संबंध जोड़ रहे थे। उस समय पंत छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, जैसी कविताओं में दो दो तीन तीन अक्षरों के छोटे छोटे कोमल शब्दों के द्वारा खड़ी बोली को मृदु बना रहे थे। सब कुछ होते हुए भी प्रसाद का संबंध अधरान से नहीं टूटा था, और निराला भी किंबा मतावली थी। वही वाली जूली की कली में किंबा से मुक्त नहीं हुए थे, परंतु पंत द्विवेदी युग के संस्कारों के प्रभाव में एक ओर साफ सुथरी खड़ी बोली लिख रहे थे और दूसरी ओर छायावादी भावना के आरंभिक रंग में कारक विभक्तियों तथा सहायक क्रियाओं को भरसक बचाकर मृदुल मंजुल पदावली का सूत्रपात कर रहे थे। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की उस प्रतिद्वंदिता की स्थिति में ब्रजभाषा के सहारे ब्रजभाषा की कोमलता का सामना करना खड़ी बोली के कवि की हार होती, इसलिए उन्होंने स्वभावतः तत्सम शब्दों का सहारा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि तत्सम शब्द खड़ी बोली के अपने न थे। तत्सम शब्दों की अपेक्षा ब्रजभाषा अवधि काव्य के तद्भव खड़ी बोली के कहीं अधिक अपने थे, लेकिन रीति काव्य के विरुद्ध छायावादी कवियों में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने ब्रजभाषा की जगह संस्कृत से शब्द उधार लिए। यह कार्य वैसा ही था जैसे कोई अपने सगे भाई से झगड़ा करके अलग होने पर उसकी अपेक्षा एकदम पराये से कर्ज ले, परंतु जिस तरह यह अलगाव दुराव ज्यादा दिन नहीं चलता, उसी तरह थोड़े दिनों बाद छायावाद ने भी रीति काव्य के अनेक तद्भव शब्द अपना लिए। पंत ने कहीं चल चितवन के बंधनवार, टांगे तो कहीं उमह बह फैल अकुल अपार हो रहे हैं, और खर तृण पात चुने तो अलग। प्रश्नों के ढींग रुक कर हुल्लास प्रकट करना तथा धूम धुआरे काजर कारे विकरारे बादर कहना आम बात है। निराला भी कभी उत्सुकता से उकता उकता कर ताकने लगते थे। कभी बोहित के हित तुलसीदास के बोहित बेरा को स्मरण कर लेते थे, और प्रसाद तो ब्रजभाषा के पुराने जाने चिन्हे थे। महादेवी के यहाँ भी हठिले जैसे कई पूर्व परिचित पद मिल जाएंगे। इन पुराने तद्भव शब्दों के अतिरिक्त छायावाद ने अपने मुख सुख के लिए कई तत्सम शब्दों को तद्भव कर डाला। अजान अनजान की पंत ने झड़ी लगा दी, कहीं कान तक खींचे अजान नयन तो कहीं मधुरता से अपनी अनजान। पुराने तद्भव शब्द अपनाने तथा नए तद्भव शब्द गढ़ने के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने अपने आसपास प्रचलित बोली के शब्द भी अपनाए। पछाही बोली में प्रचलित हौले हौले शब्द को अपनाकर मुखर पिक हौले हौले बोल लिखना फर्रुखाबाद की महादेवी के लिए स्वाभाविक ही था। इसी तरह यदि पंत ने समीप के लिए नवल कलियों के धोरे झूम लिखा तो खड़ी बोली प्रदेश के धीरे रहने का ही परिचय दिया। दूसरी ओर प्रसाद ही भाषा में कहीं कहीं बनारसी बोली का पुट दिखाई पड़ेगा तो निराला की बोली में बैसवाड़ी का छौंक। देसी शब्दों को अपनाना छायावाद में कोई आश्चर्य की बात न थी। छायावादी कविता अपनी अतिशय नागरिकता अथवा नागर के बावजूद लोक तत्वों से युक्त थी। छायावाद जिस सांस्कृतिक जागरण का परिणाम था और आगे चलकर उसने जिस स्वाधीनता आंदोलन का साथ दिया वह स्वयं मध्य वर्गीय नेतृत्व में लोक जीवन का जागरण और आंदोलन था। गांधी जी के साथ पढ़े लिखे वकील अध्यापक विद्यार्थी डॉक्टर तथा व्यवसायी ही नहीं बल्कि 7 लाख गाँव के रहने वाले किसान भी थे और गांधी जी को इन 7 लाख गांवों के बल का सबसे ज़्यादा भरोसा था। ऐसे सांस्कृतिक जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की कविता का भाव और भाषा में लोक जीवन से प्रभावित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वच्छंदतावादी काव्य की इस लोक भूमिका को आचार्य शुक्ल ने भी भांपा था। स्वच्छंदतावादी काव्य की उत्पत्ति का कारण बताते हुए वे लिखते हैं, पीड़ितों की बांधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है तब शिष्ट समुदाय लोग लोक भाषा का सहारा लेकर अपने काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। यही प्राकृतिक नियम काव्य के रूप के संबंध में भी अटकल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसाद देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। शुक्ल जी ने इस प्रकार के परिवर्तन और पुनर्विधान को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता कहा है। लोक तत्व की जिस भूमिका का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है वह श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी वाले प्रथम स्वच्छंदतावादी उत्थान के लिए जितनी सही है उतनी ही सही प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा वाले द्वितीय स्वच्छंदतावादी उत्थान अथवा छायावाद के लिए भी है। भावों की समुचित अभिव्यंजना के लिए भाषा को समर्थ बनाने के प्रयत्न में छायावादी कवियों को कभी कभी नए शब्द भी गढ़ने पड़े। निस्संदेह ये शब्द संस्कृत के प्रकृति प्रत्यय आधार पर ही गढ़े हुए परंतु ऊपर से तत्सम प्रतीत होते हुए भी वे वस्तुतः आधुनिक हैं। संभवतः ऐसे ही शब्दों को विद्वान अर्ध तत्सम कहते हैं। छायावाद का लाडला स्वप्निल विशेषण ऐसा ही अर्ध तत्सम शब्द है। इसी तरह तंद्रिल उर्मिल पांशुल स्वर्णिम आदि अनेक शब्द हैं। शब्द रचना में छायावादी कवियों ने भावों की ही तरह कभी कभी काफी स्वच्छंदता दिखलाई। जो विचारों और भावों की दुनिया में रूढ़ियों को तोड़ने वाले हैं वे भाषा के क्षेत्र में व्याकरण की रूढ़ियों में बंधकर कैसे चल सकते। फलतः पंत ने प्रियाहलाद की जगह प्री आह्लाद और मरुदाकाश की जगह मरुताकाश संधियां की। निराला ने समास रचना के क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता बरती। उन्होंने राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास में समास संबंधी स्वच्छंदता को सीमा पर पहुंचा दिया। निराला की प्रभावपूर्य तमस्तुर्य आदि हिंदी शब्द पर संस्कृत व्याकरण के लिए पंडित बहुत दिनों तक नाक भौं सिकोड़ते रहे। और छींकते छींकते निराला को सिद्धांत कौमुदी पढ़ने की सलाह देते रहे। आश्चर्य है कि किसी हिंदी वाले ने उन्हें गुरु का व्याकरण रटने की राय नहीं दी। छाबादी कवि ने ये अनुवाद शौकिया नहीं किए। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी का अनुवाद किए बिना वह भाव किसी तरह व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भावना ही अंग्रेजी संस्कार की देन है। जैसे किसी महत्वपूर्ण उक्ति अथवा शब्द का पद महत्व प्रकट करने के लिए उसके नीचे रेखा खींचना पहले के लोग ऐसा करते थे या नहीं इसका पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि यह प्रवृत्ति आधुनिक और यूरोपीय है। ऐसी स्थिति में अनुवाद के सिवा और रास्ता ही क्या है, और पंत ने हार कर यही रास्ता अपनाया। जब यह लिखा, अचल रेखांकित कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुख छवि के काव्य में। अंडरलाइन करने के लिए रेखांकित करना छोड़कर और क्या कहा जा सकता था, और यदि इस मुहावरे को छोड़कर सीधे साधे प्रमुखता की बात कह दी जाती तो वह चित्र खड़ा न होता। अर्थ विवेक छायावादी कवियों में इतना अधिक था कि उन्होंने पर्याय शब्दों में भी अर्थ भेद का पता लगाकर प्रसंग के अनुकूल उनका प्रयोग किया। जैसे लहर, तरंग, बीची, उर्मी, हिलोल आदि तथा कथित पर्यायवाची शब्दों में भी भिन्न अर्थकछाएँ हैं। इन अर्थकछाओं का छायावाद में पूरा उपयोग किया गया है। इस बात की ओर पंत का ध्यान इतना अधिक था कि उन्होंने पलों की भूमिका में यहाँ तक कह डाला कि रिपिल, बिलो, बेव, टाइड आदि वस्तु के सूक्ष्म भेद उपभेद द्योतक शब्दों के गढ़ने की ओर संस्कृत के कवियों का उतना ध्यान नहीं रहा जितना तुल्यार्थ शब्दों को बढ़ाने की ओर। शब्दों में अर्थ विवेक करते समय छायावादी कवियों ने शब्द कोश अथवा प्रचलन की अपेक्षा अपने ध्वनि बोध से अधिक काम लिया। अपनी इस रुचि का विस्तृत परिचय पंत ने पल्लव की भूमिका में दिया है। उनके अनुसार भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्राय संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रिकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भावों से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही हिल्लोर से उठान, लहर में शरीर के वक्ष स्थल की कोमल कंपन, तरंग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठ गिर पड़ना, बढ़ो बढ़ो कहने का शब्द मिलता है। वीच से जैसे किरणों में चमकती हवा के पलने में हौले हौले झूलती हुई हसमुख लहरियों का, उर्मी से मधुर मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल कल्लोल से ऊंची ऊंची बाहें उठाती हुई उत्पातपूर्ण तरंगों का आभास मिलता है। यह प्रवृत्ति पंत के अतिरिक्त निराला में भी थी। मेरे गीत और कला निबंध में उन्होंने संस्कृत के श, ण, व, ल आदि हिंदी के स, म, ब, ल संगीत की जो रोचक व्याख्या की है वह भी इसी प्रवृत्ति की ही सूचक है। उनके लिए वर्ण चमत्कार इसी में था कि एक एक शब्द बधा ध्वनिमय साकार रहे। शब्द रचना संबंधी संगीत का जहाँ तक संबंध है, छायावादी कवियों ने अलग अलग एक एक शब्द के संगीत पर ध्यान रखने के साथ ही संपूर्ण शब्द शक्ति अथवा शब्द गुम्फन के संगीत पर भी ध्यान रखा। संगीत शब्द संगति बैठाने में इन कवियों ने स्वर अथवा व्यंजन संबंधी अनुप्रास का सहारा लिया है। निराला में यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल दिखाई पड़ती है। पंत की शब्द संगति ठीक ठीक अनुप्रासों पर आधारित प्रतीत नहीं होती, शायद इसीलिए कि उनके यहाँ शब्दों का आपसी संबंध अधिक सूक्ष्म होता है। इन सबसे यह प्रमाणित होता है कि छायावादी कवियों के शब्द चयन का मुख्य सिद्धांत श्रुति माधुर्य था। इसके अतिरिक्त वे एक और प्रयोजन से शब्द चयन करते थे। यह प्रयोजन है सुंदर सुंदर स्मृति चित्र एसोसिएशंस जगाना। चित्र प्रिय छायावादी कवियों ने भी कभी कभी मूल भाव अथवा विषय वस्तु की उपेक्षा करके और कभी उसके स्वाभाविक पथ से थोड़ा इधर उधर हटकर मोहक स्मृति चित्र जगाने के लिए शब्द योजना भी की है। महादेवी और पंत में यह प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। कुल मिलाकर यदि छायावाद के समस्त शब्दों की सूची बनाकर विचार किया जाए तो पता लगेगा कि असीम, अनंत, स्वप्निल, तंद्रिल, उर्मिल, नीरव, निश्वास, उच्छ्वास, स्पंदन, कंपन, सिहरन, उन्मन, गुंजन, कलकल, टलमल, छलछल आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आवृत्तियाँ बहुत अधिक हुई हैं। ये शब्द छावादियों के तकिया कलाम से हो गए थे। यहीं पर पदविन्यास समाप्त होता है।